एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्रा एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक काफी गहरे उपन्यास पर बात करने वाले हैं, एडम लज़ारे व्हाइट का पहला उपन्यास किंग ऑफ एशेज। इसकी भावनात्मकता और कहानी कहने का तरीका बहुत तीव्र है।
हाँ बिल्कुल, और लेखक के बारे में जानना भी दिलचस्प है शुरू करने से पहले।
हाँ वही मैं कह रहा था, एडम लज़ारे व्हाइट सिर्फ लेखक नहीं हैं, वो एक कलाकार हैं कई तरह से। जूलियार्ड से ट्रेनिंग ली है अभिनय में, ऑडियो बुक का नैरेटर के तौर पर काफी तारीफ हुई है उनकी, पटकथा भी लिखते हैं और अब देखिए उपन्यासकार भी।
सही बात है, मतलब उनका ये जो विविध अनुभव है, खासकर एक्टिंग वाला, किरदारों को समझने, उनके संवादों की बारीकियों को पकड़ने की क्षमता, वो सब उनके लेखन में दिखता है। एक अलग ही गहराई आती है उससे, है ना?
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे वो किरदारों को सिर्फ लिखते नहीं बल्कि महसूस करते हैं, जीते हैं।
हाँ, और उनकी कहानियों के विषय भी देखिए, पहचान, मर्दानगी, नस्ल, और खासकर अफ्रीकी अमरीकी समुदाय के अंदर जो पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों की उलझने होती हैं, उन पे वो अक्सर बात करते हैं।
और उनकी भाषा, उसमें एक काव्यात्मकता तो है पर साथ में एक बेबाक सच्चाई भी है, सीधी चोट करती है।
सही कहा। अच्छा, एक छोटी सी बात थी जो हमें शुरू में ही साफ कर लेनी चाहिए।
हाँ, वो किंग ऑफ एशेज नाम को लेकर थोड़ी कन्फ्यूजन थी।
जी, हमारे स्रोतों में दो अलग अलग विवरण मिले। एक तो समकालीन राजनीतिक घोटाले पर आधारित कहानी बताई गई, जिसमें मार्कस थॉम्सन और सारा चेन जैसे पात्र हैं। विषय थे शक्ति, भ्रष्टाचार वगैरह।
लेकिन दूसरा स्रोत, जिसे लेखक का 2022 में प्रकाशित पहला उपन्यास कहा गया, वो हमें लुसियाना ले जाता है, वो दलदली रहस्यमयी इलाका जिसे बायो कहते हैं।
हाँ, और ये कहानी दो भाइयों रोनो और जाला और एक महिला पात्र जो, इनके बीच एक बहुत ही गहन, मतलब एक पारिवारिक त्रासदी है।
तो आज हम इसी लुइजियाना वाली कहानी पर बात करेंगे, है ना, क्योंकि इसी का विस्तृत साहित्यिक विश्लेषण मिला है और इसे ही लेखक का पहला उपन्यास माना जा रहा है।
जी हाँ बिल्कुल, तो चलिए उस दुनिया में चलते हैं, वो लुइजियाना की गर्मी, उमस, वो रहस्य।
हाँ, ये उपन्यास सिर्फ साहित्यिक कथा नहीं है, इसमें थ्रिलर वाला तनाव भी है और एक पारिवारिक गाथा का वो भावनात्मक वजन भी।
और वो बायू इलाका, वो महज बैकग्राउंड नहीं है, लगता है जैसे खुद एक किरदार हो। अंधविश्वास, पुरानी परंपराएं, पीढ़ियों से चले आ रहे अनकहे दुख, सब कुछ है उसमें।
बिल्कुल, और इसी माहौल के बीच कहानी के केंद्र में है दो भाई, बड़ा भाई रोनो और छोटा जाला।
उनका रिश्ता बड़ा अजीब है, प्यार भी है, जलन भी, और बहुत गहरा गुस्सा भी, एक अस्थिर सा मिश्रण। उनका रिश्ता है पर अपने पिता की वो भारी विरासत और अपनी अलग अलग इच्छाएं, इनके बीच जैसे फंसे हुए हैं।
आपने पिता का जिक्र किया और वो तो जैसे कहानी पर एक साये की तरह है।
हाँ, एक डरावने महान से लगने वाले व्यक्ति, उनकी मौत तो हो चुकी है पर उनका असर वो बेटों की जिंदगी पर अब भी काबिज है।
तो ये सिर्फ भाई भाई की वो आम नोकझोंक या प्रतिद्वंद्विता नहीं है?
नहीं बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जैसे केन और एबल की कहानी को एक बहुत जटिल मनोवैज्ञानिक स्तर पर ले जाया गया हो।
हाँ, सतह पर तो वही सदियों पुराना संघर्ष दिखता है लेकिन लेखक हमें और गहरे सवालों तक ले जाते हैं।
जैसे, क्या हम सच में अपने माँ बाप के कर्मों, उनकी उम्मीदों के बोझ से कभी पूरी तरह आजाद हो सकते हैं? क्या हमारी किस्मत हमारे खून में लिखी है या हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं,
भले ही उसकी कीमत उन रिश्तों को तोड़ना पड़े जो हमें पहचान देते हैं?
बिल्कुल, ये सवाल ही उपन्यास के दिल में है। ये उस मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कैद की कहानी है जिसे एक जहरीली मर्दों के दबदबे वाली विरासत ने बनाया है।
रोनो और जाला सिर्फ एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, वो अपने पिता के भूत से लड़ रहे हैं, उस जमीन के इतिहास से और अपने अंदर के उन अंधेरों से जो उन्हें एक दूसरे में भी नजर आते हैं।
तो चलिए इन किरदारों को थोड़ा और करीब से जानते हैं, रोनो से शुरू करें, बड़ा भाई।
हाँ, रोनो, उसके चरित्र में एक त्रासदी है, है ना, जैसे कोई दुखद नायक हो।
उसे परिभाषित करती है उसकी शारीरिक ताकत और पिता की विरासत का वो भारी बोझ। उसे तैयारी किया गया था वारिस बनने के लिए, सिखाया गया कि ताकत ही सब कुछ है और कमजोरी, खासकर भावनाओं को दिखाना, वो तो घातक है।
उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या लगती है?
यही कि वो अपने पिता की उस छवि पर खरा उतर सके, पर उस कठोर बाहरी कवच के नीचे वहां बहुत असुरक्षा है, नाकाफी होने का एहसास है।
और ये डर फिर गुस्से में बदल जाता है।
हाँ, एक जहरीला गुस्सा जिसे वो दुनिया पर निकालता है और सबसे ज्यादा अपने भाई जाला पर। उसकी यात्रा विकास की नहीं बल्कि विनाश की ओर जाती दिखती है।
वो अपने अंदर के राक्षसों से जीतता नहीं बल्कि वो उसे निगल जाते हैं और अंत में वो बनता है किंग ऑफ एशेज,
राख का बादशाह, जिसकी सल्तनत उजड़ चुकी है।
हाँ, उसकी जीत ही उसकी हार है। अच्छा, अब जाला की बात करते हैं। छोटा भाई, वो रौनो का आईना भी है और बिल्कुल उलट भी।
सही, जहाँ रौनो बाहरी गुस्सा और पार्श्विक बल है, वहीं जाला संवेदनशीलता और अंदरूनी कश्मकश से पहचाना जाता है। उसकी हमदर्दी, जो एक खूबी होनी चाहिए,
उसे उसके परिवार और समुदाय में एक बोझ, एक कमजोरी की तरह देखा जाता है।
हाँ, तो उसका संघर्ष क्या है? वो अपनी जगह बनाना चाहता है, अपनी पहचान बनाना चाहता है।
उस हिंसक मर्दानगी के खांचे से अलग जो उसके परिवार ने उस पर थोपने की कोशिश की है।
उसकी यात्रा एक तरह का विद्रोह है, भागने की कोशिश है उन मनोवैज्ञानिक जंजीरों से। पर कहानी ये भी दिखाती है कि अंदरूनी विरासत से भागना वो सिर्फ शारीरिक रूप से दूर जाने जितना आसान नहीं होता।
उसका अंत भी कोई साफ जीत या हार नहीं है, दुख और अनिश्चितता में डूबा हुआ।
और फिर है जो तीसरा कोण इस त्रिकोण का।
हाँ, जो उसका दोनों भाइयों से एक गहरा उलझा हुआ अतीत है। समुदाय में उसकी वापसी उन पुराने जख्मों को कुरेद देती है जिन्हें सबने दबाने की कोशिश की थी।
और वो कोई निष्क्रिय पात्र नहीं है, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपनी प्रेरणाएं, अपना दर्द है।
बिल्कुल, उसकी वापसी भाइयों के बीच सुलग रही आग को और भड़का देती है। वो शायद कोई हल ढूंढने आई है या अपने अतीत का कोई हिस्सा वापस पाने।
वो उन भाइयों की घुटन भरी दुनिया से बाहर की दुनिया का एक संभावना का प्रतीक है, लेकिन उसे भी उनके बीच के उस खतरनाक भावनात्मक इलाके से गुजरना पड़ता है।
और उसकी मौजूदगी से परिवार की वो जहरीली विरासत और ज्यादा साफ नजर आने लगती है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? आपने कहा था कि ये सीधी रेखा में नहीं चलती।
नहीं, ये तीव्र मनोवैज्ञानिक रूप से आवेशित घटनाओं की एक श्रृंखला है। डर और अनहोनी का माहौल लगातार बढ़ता जाता है। हम इसे मतलब तीन हिस्सों में देख सकते हैं। पहला भाग, वापसी और पुराने जख्मों का खुलना।
कहानी शुरू होती है भाइयों की जिंदगी की उस घुटन भरी स्थिरता से। रोनो का कठोर शासन, जाला का दबा हुआ विद्रोह। माहौल में एक अजीब सी शांति है, जैसे तूफान से पहले होती है। फिर जो की अचानक वापसी इस संतुलन को बिगाड़ देती है। फ्लैशबैक आते हैं, उनके बचपन की झलकियां, कैसे पिता ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया।
और जो की वापसी भाइयों के बीच के तनाव को एकदम चरम पर ले जाती है।
फिर आता है दूसरा भाग, प्रतिद्वंद्विता का बढ़ना और नियंत्रण का खत्म होना।
यहाँ वो मनोवैज्ञानिक युद्ध जो चल रहा था वो खुले टकराव में बदल जाता है। जाला शायद जो की मौजूदगी से हिम्मत पाकर या अपने अंदर की आजादी की इच्छा से
वो खुले तौर पर रोनो की अवहेलना करने लगता है, अपने फैसले खुद लेता है, अपनी बात रखता है।
और ये रोनू के लिए सिर्फ बेइज्जती नहीं है, ये उसके वजूद के लिए खतरा है, क्योंकि उसका पूरा आत्मसम्मान इसी दबदबे पर टिका है।
तो वो नियंत्रण वापस पाने के लिए हिंसक कोशिशें करता है, जाला को डराने की, जो से अलग करने की, लेकिन इन कोशिशों में उसका वो ताकत का मुखौटा टूटने लगता है, उसके अंदर का डर, उसकी कमजोरी दिखने लगती है।
और दूसरी तरफ जाला में एक नई ताकत उभरती है, अपनी शर्तों पर जीने की इच्छा।
बिल्कुल, और जो इस बढ़ते टकराव के बीच फंसी हुई है, कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से वापसी नामुमकिन लगती है।
और फिर आता है तीसरा भाग, चरमोत्कर्ष और वो अनिवार्य त्रासदी,
उपन्यास का क्लाइमैक्स। यहां सारे तनाव एक विनाशकारी हिंसक अंत पर पहुंचते हैं। भाइयों का वो आखिरी टकराव उस शब्दों से परे है,
क्रूर, आदिम और बहुत दुखद।
हाँ, ये उनकी उस शापित विरासत की अंतिम अभिव्यक्ति है, जहां प्यार और नफरत एक हो जाते हैं, जहां बचाने की इच्छा और तबाह करने की इच्छा एक ही विनाशकारी काम में मिल जाती हैं।
और नतीजा भयानक, भाइयों का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाता है, उनकी दुनिया राख हो जाती है, कोई नहीं जीतता।
रोनो शायद शारीरिक रूप से हावी हो जाए, पर वो सचमुच राख का बादशाह बन जाता है, एक वीरान सल्तनत का।
और जाला का भाग्य वो उस भारी कीमत को दिखाता है जो शायद किस्मत को चुनौती देने के लिए चुकानी पड़ती है। कहानी हमें उस तबाही के बाद की खामोशी में छोड़ जाती है।
ये उपन्यास वाकई कई गहरे और परेशान करने वाले विषयों को छूता है। सबसे प्रमुख तो है विरासत, और विरासत में मिले आघात का अत्याचार।
हाँ, रोनो और जाला आजाद नहीं है, वो अपने दबंग पिता के उत्पाद हैं, जिनका प्रभाव उनकी मृत्यु के बाद भी बना रहता है। कहानी दिखाती है कि कैसे आघात पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है,
एक न टूटने वाली जंजीर की तरह। रोनो का गुस्सा उसका अपना नहीं लगता, सीखा हुआ लगता है। जाला का संघर्ष इसी सिलसिले को तोड़ने का है।
फिर दूसरा महत्वपूर्ण विषय है वो विषाक्त पुरुषत्व, ताकत का प्रदर्शन।
हाँ, उपन्यास मर्दानगी की उस विनाशकारी परिभाषा की तीखी आलोचना करता है जो सिर्फ शारीरिक शक्ति, प्रभुत्व और भावनाओं के दमन को महत्व देती है। रोनो इसका प्रतीक है।
काब है जिसके पीछे डर छिपा है, वो प्यार या कमजोरी जाहिर ही नहीं कर पाता
सिवाय नियंत्रण या हिंसा के जरिए, और इसी पैमाने पर जाला की संवेदनशीलता को कमजोरी माना जाता है। उपन्यास दिखाता है कि मर्दानगी की ये तंग सोच आखिर में मर्दों को ही तबाह करती है।
और प्यार और हिंसा की वो द्वैतता, वो भी बहुत गहराई से दिखाई गई है, खासकर रोनो के जाला के प्रति व्यवहार में।
हाँ, उसका प्यार अक्सर नियंत्रण और हिंसा का एक विकृत रूप ले लेता है। वो अपने भाई को बचाने की इच्छा और उसे पूरी तरह कंट्रोल करने की जरूरत में फर्क नहीं कर पाता। ये उनके छूने में, उनकी यादों में, उनके संवादों में झलकता है।
जैसे कहानी कह रही हो कि जिन परिवारों में दर्द का राज होता है, वहां प्यार भी एक हथियार बन सकता है।
और वो दार्शनिक सवाल भी है, भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा का।
क्या पात्र अपनी नियति के स्वामी हैं, या वे केवल एक पहले से लिखी पटकथा निभा रहे हैं? वो दलदली मिथकीय सेटिंग इस भावना को और गहरा करती है।
रोनो को लगता है वो पिता के रास्ते पर चलने को मजबूर है। जाला की पूरी कोशिश इसी के खिलाफ है।
अंत में यादों की ताकत और उसका खतरा, वो भी एक अहम विषय है।
हाँ, पात्र अपने अतीत से प्रेतवाधित हैं, यादें उनके वर्तमान के फैसलों को आकार देती हैं और कई बार दूषित भी करती हैं। फ्लैशबैक का इस्तेमाल भाइयों के झगड़े की जड़ों को दिखाता है। यादें एक जेल भी हो सकती हैं और शायद आजादी की चाबी भी।
एडम लेजारे वाइट की कथन शैली, वो भी उपन्यास की एक पहचान है।
बिल्कुल, भाषा गीतात्मक है पर मांसल भी है, मतलब काव्यात्मक सुंदरता और कच्ची ईमानदारी का मिश्रण। वो लुजियाना की उस दलदली गर्मी उमस को जैसे जिंदा कर देते हैं।
और वो क्लोज थर्ड पर्सन परिप्रेक्ष्य, हाँ, जो मुख्य रूप से रोनो और जाला के बीच बदलता रहता है।
हाँ, वो हमें दोनों भाइयों के युद्धरत मनोविज्ञान तक सीधी पहुंच देता है। हम रोनो का गुस्सा, उसका डर महसूस करते हैं, जिससे नफरत के साथ कहीं एक कोने में सहानुभूति भी जगती है।
फिर हम जाला के आंखों से दुनिया देखते हैं, उसकी घुटन, भाग जाने की उसकी तड़प। ये दोहरा नजरिया कहानी को और पेचीदा बनाता है।
संरचना भी सीधी नहीं है। वर्तमान कहानी में यादें और फ्लैशबैक बुने हुए हैं, जो दिखाता है कि अतीत कैसे लगातार वर्तमान पर हावी रहता है।
और प्रतीकात्मक का इस्तेमाल, वो भी जबरदस्त है। वो दलदल या वायु,
हाँ, वो सिर्फ जगह नहीं, किरदारों की मनोवैज्ञानिक स्थिति का प्रतीक है। खूबसूरत, खतरनाक, रहस्यों से भरा।
और आग और राख का रूपक शीर्षक में ही है।
बिल्कुल, विनाशकारी क्रोध, जुनून और उसके परिणाम। राख मतलब दुख, नुकसान और एक खोखली जीत। रोनो का किंग बनना उसी बर्बादी पर राज करना है।
और वो शारीरिक निशान और ताकत, वो अंदरूनी अवस्थाओं और उस विषाक्त पुरुषत्व के प्रतीक हैं।
भाषा और वातावरण का निर्माण अद्भुत है। लयबद्ध वाक्य, तीव्र संवेदी विवरण, गर्मी, गंध, आवाजें पाठक को कहानी की दुनिया में खींच लेते हैं। भाषा अक्सर मिथकीय या बाइबल जैसी लगती है, जो भाइयों के व्यक्तिगत संघर्ष को एक कालातीत कहानी का रूप देती है।
किंग ऑफ एशेज पढ़ना एक भावनात्मक रूप से थका देने वाला लेकिन गहरा मार्मिक अनुभव है।
हाँ, ये पाठक को उदासी और सहानुभूति के गहरे भावों के साथ छोड़ देता है। किरदारों के लिए दुख महसूस होता है, जो ऐसी ताकतों से फंसे हुए लगते हैं जिन पर उनका नियंत्रण नहीं।
उपन्यास की स्थायी छाप उसके उस भुता हुआ माहौल और उन कठोर सवालों में है जो वो उठाता है।
ये हमें परिवार, विरासत और हिंसा के चक्रों के बारे में असहज सत्यों का सामना करने के लिए मजबूर करता है। खास तौर पर यह दिखाता है कि विषाक्त पुरुषत्व पुरुषों की आत्माओं को कैसे नष्ट कर देता है।
कुछ विचारों को अगर शब्दों में ढालना हो, जैसे वो धारणा की
एक आदमी वही होता है जो उसका पिता उसे बनाता है, खून अपना रास्ता जानता है, ये रोनो की वो नियतिवादी सोच दिखाता है।
या रोनो के अपने भाई के प्रति वो विरोधाभासी प्यार, जैसे उसने अपने भाई को उन्हीं हाथों से पकड़ा जो उसे तोड़ सकते थे, प्यार एक पिंजरा था।
हाँ, ये प्रेम और हिंसा के दुखद मिश्रण को उजागर करता है।
और जो का दृष्टिकोण जो भाइयों को देखती है और शायद सोचती है।
दो आदमी नहीं बल्कि एक टूटी हुई आत्मा के दो हिस्से जो हमेशा खुद से युद्ध में है, ये उनके आंतरिक संघर्ष को बाहरी रूप देने जैसा है।
तो अंत में ये उपन्यास हमें यही दिखाता है कि पारिवारिक विरासत और समाज द्वारा थोपे गए मर्दानगी के खांचे कितने विनाशकारी हो सकते हैं।
और ये गहरा सवाल छोड़ जाता है कि क्या व्यक्ति वास्तव में अपने अतीत के बोझ से मुक्त होकर अपना रास्ता बना सकता है, या कुछ चक्र तोड़ने के लिए बहुत गहरे होते हैं।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।